गिनती अध्याय 21। आज अपनी अपनी बाइबल से खोलिए गिनती अध्याय 21, जो हमें आज के अध्ययन में ले चलेगा। इसराइल की संतान जंगल में करीब 39 वर्ष रहे और अब वे प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हम जंगल की इस लंबी यात्रा के अंत पर आ रहे हैं। मरियम और हारून और जो लोग मिस्र में से निकलकर आए थे, वो पूरी पीढ़ी समाप्त हो गई। अब वे एदोम का चक्कर लगाकर प्रतिज्ञा के देश की ओर बढ़ रहे हैं। अब वे देश के पूर्वी भाग की ओर आ रहे थे। वे इसराइल के दक्षिण भाग की ओर सीधे हेब्रोन से नहीं, परंतु चक्कर लगाकर आ रहे थे। वास्तव में वे एदोम का चक्कर लगाकर गलील के क्षेत्र में गोलान ऊंचाइयों पर आए, जहां से वे मृत सागर के पूर्व की ओर से देश में पहुंचेंगे। वास्तव में जिस देश में पहला कदम रखेंगे वो यरीहो होगा, जो मृत सागर के उत्तर की ओर है। उन्होंने एदोम का चक्कर लगाया और अब प्रतिज्ञा के देश की ओर आ रहे हैं, जहां उन्हें मोआबी और एमोरी मिले, जो वहां उत्तरी भाग में रहते थे। दक्षिण भाग में एदोम था, एदोम के उत्तर में मोआब, मोआब के उत्तर में एमोरी रहते थे। इसलिए वे बाहर चलकर दूसरे रास्ते से चले। 15 लाख लोगों की ये यात्रा विशेष रही होगी। ये मनोरंजक अनुभव था। अब आराद का कनानी राजा, जो दक्षिण देश में रहता था, ये सुनकर कि जिस मार्ग से वे भेदिए आए थे उसी मार्ग से अब इसराइली आ रहे हैं, इसराइल से लड़ा और उनमें से कितनों को बंधुआ कर लिया। तब इसराइलियों ने यहोवा से यह कहकर मन्नत मानी कि यदि तू सचमुच उन लोगों को हमारे वश में कर दे, तो हम उनके नगरों को सत्यनाश कर देंगे। इसराइल की यह बात सुनकर यहोवा ने कनानियों को उनके वश में कर दिया, सो उन्होंने उनके नगरों समेत उनको भी सत्यनाश किया। इससे उस स्थान का नाम होरमा रखा गया। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूमकर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। गिनती 21 अध्याय 1-4 पद। ये कठिन मार्ग था। देश में सीधे आने की तुलना में घूमकर जाना एक लंबा मार्ग था, जो उन्हें हतोत्साह कर रहा था, क्योंकि उन्हें एदोम के बाहर चक्कर काटकर जाना पड़ रहा था। कनानियों ने उनको मारा, तब उन्होंने कहा, परमेश्वर हमारी सहायता करे तो हम कनानियों को पूरा मिटा डालेंगे। और परमेश्वर ने उनकी सहायता की और उन्होंने कनानियों को मिटा डाला। तब उन्होंने मृत सागर के तट के किनारे किनारे एदोम का चक्कर काटकर चलना आरंभ किया। सो वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहां ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। वे फिर परमेश्वर के विरुद्ध शिकायत कर रहे हैं, तो क्यों हमें मिस्र से निकालकर मरने के लिए यहां जंगल में ले आया है? हमारे पास ना रोटी है और ना पानी, हम मन्ना खाते खाते उकता गए हैं। जैसे हमने पहले बताया था कि किसी भी परिस्थिति में शिकायत करने का स्थान रहता है, ये निश्चित है कि परिस्थिति कैसी भी हो, आपको शिकायत करने पर विषय मिल जाता है। इसी तरह हर परिस्थिति में आप धन्यवाद करने का मौका भी ढूंढ सकते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो हर मौके को शिकायत का मौका बना लेते हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो हर मौके को धन्यवाद करने का मौका बना लेते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे लोग भी हैं जो सदा भलाई ही को देखते हैं और ऐसे लोग भी हैं जो सदा बुराई को देखते हैं, क्योंकि वे शिकायत करने के आदी हैं। ये लोगों के जीवन का उद्देश्य बन जाता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारा उद्देश्य धन्यवाद करने का हो। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। पहला तिस्लोनिकियों 5:18। परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन धन्यवाद का जीवन हो, और जो कुछ उसने तुम्हारे लिए किया है तुम उसकी प्रतीति करो। ये सच है कि मन्ना निस्संदेह एक नीरस वस्तु हो गई थी। उसमें अधिक स्वाद नहीं था, वो मानो एक हल्का स्वाद रहित भोजन था, तो भी उसमें अधिक बल प्रदान करने की क्षमता थी। पोषक तत्व एवं खनिज पदार्थों के कारण वो एक पौष्टिक भोजन था। भजन संहिता के अनुसार वो स्वर्ग दूतों का भोजन था। उनको शूर वीरों की सी रोटी मिली। भजन 78:25। तो भी लोगों ने धन्यवाद ना देकर शिकायत करना पसंद किया। मेरे परमेश्वर तू कितना भला है, तू असफल नहीं होता, हर दिन सुबह मन्ना मिलता है। प्रभु तूने पूरे रास्ते हमें दिया है, तूने हमें संभाला है, प्रभु तूने हमारे साथ भलाई की है। नहीं, ये मन्ना इसे खाकर हम दुखी हो गए। लोग सदा ही ऐसे ही करते हैं। परमेश्वर ने उन्हें शिकायत का दंड दिया। उसने तेज विष वाले सांप भेजे जो बहुत अधिक जहरीले थे। जब वे लोगों को काटते तब लोग तड़पते और तुरंत मर जाते थे, और वे जान गए कि उनकी शिकायत के विरुद्ध ये परमेश्वर का दंड है। जब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है और हमने यहोवा और तेरे विरुद्ध बातें की है, यहोवा से प्रार्थना कर कि वो सांपों को हमसे दूर करे, तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। गिनती 21:7। उन्होंने अपने पाप को मान लिया। यही एक मुख्य बात होती है। बाइबल कहती है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। भजन 32:5। तुम अपने अपराध को छिपाते हो, इनकार करते हो, तो परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। परंतु यदि तुम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है और हमें सारे अधर्मों से शुद्ध करता है। बहुत बार लोग अपने पापों को स्वीकार करते हैं, परंतु हृदय में छिपे पाप को वे स्वीकार नहीं करते हैं। फिरौन ने कहा, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। निर्गमन 10:16। परंतु उसने जानकर फिर वही चीज की। यहां लोगों ने कहा, हमने पाप किया है। वे समझ गए कि उनका बुड़बुड़ाना पाप था और इसलिए परमेश्वर का न्याय उन पर आया था। मूसा, हमारे लिए प्रार्थना कर कि परमेश्वर हमारी सहायता करे। अतः मूसा ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंभे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वो जीवित बचेगा। तब मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंभे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वो जीवित बच गया। गिनती 21:8-9। परमेश्वर ने लोगों के करने के लिए कुछ रखा। दूसरे शब्दों में, तुम जीवित रहो या मरो, ये तुम्हारा चुनाव है। जीवित रहना सहज है, तुम्हें जो करना है वो है खंभे पर लटके पीतल के सांप की ओर देखना और तुम चंगे हो जाओगे, तुम जीवित रहोगे। मरना भी बहुत सहज है, तुम्हें जो करना है वो ये है कि उस पीतल सांप की ओर नहीं देखे और तुम मर जाओगे। किसी ने कहा, मुझे बर्बाद होने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, बस जैसा तुम कर रहे हो ऐसा ही करते रहो और तुम बर्बाद हो जाओगे। मुझे बचाए जाने के लिए क्या करना है? जो तुम्हें करना है वो ये है, विश्वास के साथ यीशु मसीह की ओर देखना, उस पर भरोसा और आशा रखना। उद्धार बहुत सहज है। इसलिए मूसा ने पीतल का सांप बनाया और खंभे पर रखा, और जब लोगों को सांप काटता वे पीतल के सांप को देखते थे और चंगे हो जाते थे और जीवित रहते थे। इस तरह परमेश्वर ने यीशु मसीह के क्रूस की पूर्व प्रतिछाया बड़े रोचक तरीके से प्रस्तुत की। सांप सदा ही पाप का प्रतीक रहा है, क्योंकि शैतान सांप के रूप में आदन की वाटिका में आया। पीतल तो सदा न्याय का प्रतीक रहा है। उन्होंने स्वीकार किया, हमने पाप किया है। पीतल का सांप खंभे पर इस बात का प्रतीक था कि तुम्हारे पापों का न्याय हुआ है। अब यदि तुम पीतल के सांप की ओर देखो, तुम चंगे हो जाओगे। बाद में हिजकिया के दिनों के आरंभ में लोगों ने पीतल का सुंदर कारीगरी वाला सांप बनाया और देश की यात्रा में अपने साथ रखा, और सभी न्यायियों और राजाओं ने अपने समय में ये पीतल का सांप अपने साथ रखा। हिजकिया के राज्यकाल में यहूदा में लोगों ने इस पीतल के सांप की आराधना आरंभ कर दी थी। उन्होंने इसकी एक प्रतिमा बना ली और वे उसकी आराधना करते थे, अर्थात वे पीतल के सांप की पूजा करते थे। यदि कोई मूरत की पूजा करने लगे तो इससे क्या पता चलता है? यह कि मैंने जीवते परमेश्वर की चेतना को खो दिया है। मैं भूल चुका हूं कि परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए मैं किसी और को ढूंढ रहा हूं जो मुझे परमेश्वर की उपस्थिति की याद दिलाए। इस कारण मैं एक प्रतीक, एक प्रतिमा या कुछ भी बना लेता हूं कि वो मुझे परमेश्वर की उपस्थिति की याद दिलाए। मुझे एक प्रतिमा इसलिए चाहिए कि वो मुझे याद दिलाती रहे कि मैंने परमेश्वर की उपस्थिति की चेतना खो दी है। दूसरी बात जो मूर्ति पूजा दर्शाती है वो ये है कि जो मैंने खो दिया है उसकी एक तीव्र अभिलाषा मैं अपने भीतर रखता हूं। मैं परमेश्वर से अर्थपूर्ण संबंधों की एक तीव्र अभिलाषा रखता हूं, इसलिए मैं उसकी स्मृति के लिए कुछ बना लेता हूं, एक ऐसी चीज जो मेरे मन और ध्यान को परमेश्वर की ओर ले जाए। इस तरह ये सदा आत्मिक अवनीति का एक चिन्ह होता है। जब हिजकिया राजा बना तब उसने उस पीतल के सांप को जो मूसा ने बनवाया था टुकड़े टुकड़े कर दिया, क्योंकि लोग उसको सिजदा करते, उसकी उपासना करते और उसके सामने प्रार्थना करते थे। उसने उसके टुकड़े कर दिए और कहा, ये परमेश्वर नहीं है, वो भगवान नहीं है, वो तो मात्र पीतल का टुकड़ा है। ये कितनी दुखदाई बात होती है जब लोग किसी भवन या वस्तु की आराधना करना आरंभ कर देते हैं। हमारे पास एक चर्च था जिसके मंच और उपदेश मंच को हम नया रूप दे रहे थे, और एक महिला ने आकर कहा, भाई तुम उस उपदेश मंच को बदल नहीं सकते, इसको फला फला ने बनवाया था और इस पर से कितने ही अभिषिक्त प्रवचन हुए हैं। ओह, बहुत भयानक होगा यदि आपने इस मंच के साथ कुछ भी किया, और अनेक प्रकार की अंधविश्वासी बातें कि मैं जानता था कि यदि हमने मंच को बदला तो कलीसिया में विभाजन हो जाएगा, कलीसिया का विभाजन, और वो भी एक मूर्खता की बात पर। इन बातों से उन्हें चोट पहुंचती है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की अति आवश्यक उपस्थिति की चेतना अपने जीवन से खो दी है। ओ, मुझे याद आता है एक संदेश ये था, वो बहुत शक्तिशाली था। एक पादरी कभी उस उपदेश मंच पर था जिसके पोर सफेद हो गए और उस पर परमेश्वर का अभिषेक था। ओह, उपदेश मंच को मत हटाओ। ठीक है, पर मंच खराब हो गया था, इसलिए हम उसे सुधारना चाहते थे। ये सबसे बुरी दशा का मंच था जो आपने कभी देखा हो। पुराने नमूने का, टूटी हुई कुर्सियां और लगभग पूरा ध्वस्त था। इसलिए मैंने नया उपदेश मंच बनाया, परंतु पुराने वाले का आधार रहने दिया और उसके चारों ओर नई लकड़ी लगाकर नया आकार आधुनिक नमूने का कर दिया और वो उस पुराने मंच से मेल खाने लगा। वो महिला चर्च आई और अपना आपा खो बैठी जब उसने नया उपदेश मंच देखा। वो तूफान की तरह उबलती हुई मेरी तरफ आई और आंखें तरेर कर बोली, मैंने कहा था कि उस मंच को कुछ मत करना। मैंने कहा, एक मिनट रुको, इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। मैंने उसे पास ले जाकर मंच के पीछे दिखाया कि मैंने उसे चारों ओर नया बनाया है और वो खुश हो गई। ओ, परमेश्वर की स्तुति हो, हमारा उपदेश मंच अभी भी है। पीतल का एक टुकड़ा, कुलाड़ी चलाओ, वो मात्र एक लकड़ी की चीज है, इसमें कुछ पवित्रता नहीं है। ये एक पुराना टूटा हुआ लकड़ी का सामान है। लोग पुरानी चीजों से मोह रखते हैं। जहां मैंने यीशु को ग्रहण किया, ओ, उस चर्च में आप कुछ नहीं बदल सकते। ये एक रोचक बात है। जब हम एक छोटे प्रार्थना घर में थे और हमने बड़े स्थान का प्रबंध किया था जहां हमें जाना था, उस समय जो कुछ हम कर पाए वो था कि हम बड़ा सर्कस टेंट लगाए और ऐसा ही हमने किया। लोग वहां जाते हुए कहते थे, हम आशा करते हैं कि हम उस गर्म जोशी के एहसास को नहीं खोएंगे जब हम बड़े तंबू में जाएंगे। मैंने आशा की कि हम उस सुंदर एहसास को नहीं खोएंगे जब वहां जाएंगे। 2 वर्षों तंबू में बिताने के बाद चर्च भवन बनकर तैयार हो गया। तब वे कहते, ओह, मैं आशा करता हूं कि हम तंबू का सुंदर गर्म एहसास नहीं खो देंगे जब हम भवन में जाएंगे। मानो कि तंबू या भवन कुछ है। सच्चा एहसास यीशु मसीह के प्रेम से आता है जो हमारे हृदयों और जीवन में कार्य करता है। हम लोग घास पर या समुद्र तट पर भी संगति कर सकते हैं और परमेश्वर का एहसास वहां भी हो सकता है, क्योंकि सुंदर साफ नरम एहसास भवन में नहीं, लकड़ी के सामान में नहीं, वो तो परमेश्वर के लोगों के हृदयों में होता है। ये तो दुख की बात है जब लोग परमेश्वर की चेतना खो देते हैं या परमेश्वर की उपस्थिति को किसी स्थान तक सीमित कर देते हैं। भवन या हाथ की बनाई हुई वस्तु पर या किसी लकड़ी की वस्तु पर या पीतल के सांप पर या ऐसी ही किसी चीज पर। राजा हिजकिया ने बुद्धिमानी से सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कहा, पीतल का टुकड़ा, ये पीतल की चीज है, ये ईश्वर नहीं है। यदि तुम मिलान इटली में संत एम्ब्रोस चर्च जाएं, तो जोड़े गए सांप के टुकड़ों को देख सकते हैं और लोग वहां अपनी प्रार्थनाएं चढ़ाते हैं और उसके शीशे के आवरण को चूमते हैं, क्योंकि उनकी कहानी के अनुसार किसी ने उन टुकड़ों को जमा किया और अब उसे दर्शन के लिए फिर से रख दिया। परंतु अधिक मुख्य बात नए नियम में यीशु मसीह बताता है, पीतल का सांप जो खंभे पर उठाया गया था। जब निकोदिमुस रात को उसके पास आया और पूछा कि उद्धार पाने के लिए क्या करें। यीशु ने कहा, नया जन्म ले। तेरे कहने का अर्थ क्या है? मैं तो बूढ़ा मनुष्य हूं, मैं अपनी मां के घर में कैसे प्रवेश कर सकता हूं? दोबारा जन्म लेने से तुम्हारा क्या अर्थ है? यीशु ने कहा, निकोदेमस, दो तरह के जन्म है, एक शारीरिक और दूसरा आत्मिक। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। विचलित ना हो, क्योंकि मैं कहता हूं कि तुझे नया जन्म लेना है। परंतु ये सब कैसे हो सकता है? यीशु ने इस प्रश्न का उत्तर दिया, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, क्योंकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। योहन्ना 3:14-15 पद। इस तरह मनुष्य नया जन्म पाता है यीशु मसीह को देखने से, जो क्रूस पर ऊंचे पर चढ़ाया गया। परमेश्वर ने मेरे पापों का न्याय किया और यीशु ने परमेश्वर का न्याय मेरे पापों के लिए सहा, क्योंकि पीतल का सांप पापों के न्याय का प्रतीक था, जो मनुष्य के पापों के होने वाले क्रूस पर न्याय का प्रतीक था, और परमेश्वर ने हमारे सारे अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया और उसने संसार के पापों को सह लिया, और इस तरह परमेश्वर ने संसार के पापों का न्याय यीशु मसीह पर क्रूस के द्वारा किया। तुम जो मर रहे हो पाप की मरणहार विपत्ति से, तुम्हें जीवित रहने के लिए यीशु मसीह के क्रूस की ओर देखना है, और जानो कि तुम्हारे पाप का न्याय हो चुका है, और विश्वास करो। इसलिए पीतल का सांप जो जंगल में खंभे पर लटकाया गया, वो यीशु क्रूसीकरण का प्रतीक था कि उसने ऊपर उठाए जाकर, अर्थात क्रूस पर सदा के लिए हमारे पापों का दंड चुकाया। फिर इसराइलियों ने कूच करके ओबोत में डेरे डाले। गिनती 21:10। अब वो अपनी यात्रा लंबा चक्कर लगाकर कर रहे थे, और यहां विभिन्न स्थानों का उल्लेख किया गया है जहां उन्होंने तंबू लगाए। इस कारण यहोवा के संग्राम नाम पुस्तक में इस प्रकार लिखा है, गिनती 21:14। वे एक रोचक पुस्तक है, मैंने इसे कभी नहीं पढ़ा। मैं समझता हूं कि वो खो गई और शायद हमें नहीं मिलेगी, यहोवा के संग्राम नाम पुस्तक। परंतु क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने युद्ध किए और कि सूपा में बाहेब और अर्नोन की घाटी तक, फिर वहां से कूच करके वे बैर तक गए। गिनती 21:14-16 पद। यहां बैर का अर्थ कुआ, बेर्शेबा कुआ है। वे लोग बैर के कुएं तक आए। वहां वही कुआ है जिसके विषय में यहोवा ने मूसा से कहा था कि उन लोगों को इकट्ठा कर और मैं उन्हें पानी दूंगा। उस समय इसराइल ने ये गीत गाया कि हे कुएं उबला, उस कुएं के विषय में गाओ। गिनती 21:16-17 पद। एक कुआ उबला, और इस तरह उन्होंने लोगों का उत्साह बढ़ाया कि वे भी गीत गाए। परंतु उन्होंने इस गाने में ये नहीं जोड़ा, मेरे भीतर से जीवन जल की नदियां फूट पड़ेगी। जिसको हाकिमों ने खोदा और इसराइल के रईसों ने अपने सोटों और लाठियों से खोद लिया। गिनती 21:18। फिर वे पिसगा की चोटी पर गए, जहां से वे प्रतिज्ञा के हुए देश को देख सकते थे, क्योंकि अब वे मोआब देश में थे। अब इसराइल ने एमोरियों के राजा के पास राजदूत भेजे कि वो उसके देश में से निकलने की आज्ञा प्रदान करे, जैसा उन्होंने एदोमियों के राजा से की थी। एमोरियों के राजा ने इनकार किया और अपनी सेना लेकर उनसे युद्ध करने आया, क्योंकि एदोमी वास्तव में उनके संबंधी थे। वे शांति से एदोमियों के देश के बाहर चले गए, परंतु एमोरी उनके संबंधी नहीं थे। इसलिए एमोरियों का राजा सीहोन अपनी सेना के साथ सामना करने आया। तब इसराइलियों ने उसको तलवार से मार लिया और अर्नोन से याबोक नदी तक, जो अमोनियों का सिवाना था, उसके देश के अधिकारी हो गए। अमोनियों का सिवाना तो दृढ़ था। गिनती 21:24। उन्होंने एमोरियों के क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया, जो गलील समुद्र के पूर्वी क्षेत्र से मोआब के पश्चिम और गलील से यर्दन के दक्षिण में है। इसलिए वो गोलान का क्षेत्र, जिसको आज गोलान की ऊंचाइयां कहते हैं, परंतु इतने ऊंचे नहीं है जितने कि गलील समुद्र के पूर्वी क्षेत्र में सीरिया की पहाड़ियां, यहीं पर एमोरी रहा करते थे। इसी स्थान को इसराइलियों ने विजय किया और बाद में पहुंचने वाला गोत्र यहां बस गए। ये पशुपालन के लिए उपयुक्त देश है। रूबेन और गाद के वंश पशु पालते थे, इसलिए आधा गोत्र रूबेन और गाद का स्थायी तौर पर वही बस गए जब तक कि इसराइल बना रहा। वे लोग यर्दन नदी के पूर्वी तट पर बस गए। इसराइल ने एमोरियों के सब शहरों को ले लिया और वहां बस गए, और एमोरियों की राजधानी हेशबोन को भी ले लिया। उन्होंने अपना विजय की घोषणा गीत गाकर की। तब वे मुड़कर बाशान के मार्ग से जाने लगे और बाशान के राजा ओग ने उनका सामना किया, अर्थात लड़ने को अपनी सारी सेना समेत एद्रेई में निकल आया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैं उसको सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में कर देता हूं। और जैसा तूने एमोरियों के राजा हेशबोन वासी सीहोन के साथ किया है, वैसे ही उसके साथ भी करना। तब उन्होंने उसको और उसके पुत्रों और सारी प्रजा को यहां तक मारा कि उसका कोई भी ना बचा, और वे उसके देश के अधिकारी हो गए। गिनती 21:33-35 पद। उन्होंने उस देश को अपने अधिकार में इसराइल के पश्चिमी छोर और गलील के समुद्र के पूर्वी तट और यर्दन नदी को अपने अधिकार में ले लिया।